आज की बात। श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। आज की बात में हमारी चर्चा का विषय है राजनीतिक शिष्टाचार पर उठते सवाल। भारत की राजनीति में घटनाओं और परिवर्तनों का क्रम हमेशा ही चलता रहता है और ऐसे बदलाव आते रहते हैं जिनकी पहले से अपेक्षा नहीं होती। हालिया घटनाक्रम को देखा जाए तो एक बड़ा बदलाव बिहार राज्य में आया, जहां महागठबंधन टूट गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने त्यागपत्र देकर और गठबंधन तोड़कर भाजपा से हाथ मिला लिया और भाजपा के सराहारे पुनः सरकार बना ली। नीतीश कुमार के इस कदम पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आई हैं। वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ तो इस कदम से काफी आहत दिखे।
नीतीश कुमार ने एक बहुत बड़ा बलिदान किया है। अपने मान, अपनी मर्यादा, अपने चाल, अपने चरित्र, अपने चेहरा, सब कुछ बलिदान करके वो बिहार की नगर वधु बन गए हैं। सब बिहार के लिए उन्होंने किया है। जिनके खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिस सेक्युलरिज्म के लिए बिहार की जनता ने उन्हें वोट दिया था, कल उन्हीं को धोखा देकर वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने को तैयार हो गए और आज एक बार फिर वो मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया है उससे ये भी सुनिश्चित हो गया है कि एक बहुत बड़ा विपक्ष का जो गठबंधन आने वाले चुनाव में, जो महज 1 साल 10 महीना दूर हैं, आने वाले चुनाव में बीजेपी को टक्कर दे सकता था, उसकी संभावना बहुत कम हो गई है। बहुत बुरी तरह से उसको प्रहार लगा है, चोट पहुंची है। अब इस वक्त प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बहुत खुश हैं, क्योंकि लालू यादव को वैसे भी बांध रहे हैं अलग अलग मुख्तलिफ केसों में, लालू यादव और उसके परिवार को। और ये संदेश दूसरी विपक्षी पार्टियों के लिए भी है, जहाँ जहाँ जिन जिन के पास हराम का पैसा है कि तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो, चुप रहो। कुल मिलाकर एक ऐसी स्थिति बनी है कि नीतीश कुमार ने ठीक वक्त पर पलटी खाई है, आइडियोलॉजिकल यूटर्न लिया है और उन ताकतों से हाथ मिलाया है जिनके खिलाफ वो पहला गठबंधन तोड़कर निकले थे। कुल मिलाकर इस वक्त 2019 की तैयारी चल रही है, जहां जहां जो जो राजनीतिक गतिविधि हो रही है वो 2019 के चुनाव को लेकर हो रही है, जिसमें सिर्फ 1 साल 10 महीना रह गया है। नीतीश कुमार ने नमक का फर्ज अदा किया है, जैसे एक तरह से उन्हें मालूम है कि उनकी जो रोटी है वो किस तरफ से चुपड़ी हुई है। उनका आदर्शवाद, उनका चाल, उनकी चरित्र, चेहरा, इमेज सवाल के दायरे में आ गई है।
वरिष्ठ लोकप्रिय पत्रकार व एंकर रविश कुमार ने बिहार की घटना को इस नजर से देखा।
नमस्कार, मैं रविश कुमार। 3-4 साल के मीडिया और पॉलिटिक्स का पैटर्न देखिए। पहले एक इवेंट आता है, फिर उससे बड़ा इवेंट आता है, फिर कोई महा इवेंट आता है, फिर बीच में छोटे मोटे इवेंट आने लगते हैं, फिर बड़ा और महा इवेंट लॉन्च होता रहता है। एक विषय पर बहस निष्कर्ष पर पहुंचती नहीं कि दूसरा मुद्दा और आरोप आ जाता है। इस बैंड पर कभी विपक्ष के खेमे के यहाँ छापा पड़ता है, बगावत होती है और वो सब बीजेपी में ही वहां से निकलकर आते हैं और आकर पवित्र हो जाते हैं। चुनाव आएगा तो विपक्ष का स्ट्रिंग होने लगेगा, फिर राज्यों में पिछले दरवाजे से सरकार का बनना और गिरने का भी सीजन चलेगा। इस पैटर्न को समझने के बाद आपका काफी समय बच सकता है। 2015 में सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार को धोखेबाज कहा, मगर इस्तीफा देने के 1 घंटे के भीतर 2017 में उनको अपना नेता भी चुन लिया। नीतीश कुमार ने भी उनका दामन थामा। बिहार में सरकार बन गई है तर्क सम्मेलन के बाद, जो तर्क है वो सम्मेलन के बाद के शमियाने में प्लास्टिक के प्लेट की तरह इधर उधर हवा में उड़ रहे हैं। 20 महीने ही पुरानी हुई है बिहार विधानसभा की तस्वीरें। क्या घमासान हुआ नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच? कोई मोदी की राजनीति की तुलना हिटलर से कर रहा था तो मोदी नीतीश कुमार को अवसरवादी और डीएनए में खराबी बता रहे थे। बिहार की जनता ने नीतीश लालू कांग्रेस का गठबंधन ही चुना। जब जनादेश बीजेपी को नहीं मिला तो क्या बीजेपी को इस संकट में जनता से पूछने की अपनी नैतिकता का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए? क्या बगैर जनादेश के किसी सरकार में जाना पिछले दरवाजे के सियासी खेल के आरोपों की पुष्टि नहीं करता है? नए फैसले में बिहार की जनता की औपचारिक राय नहीं है। क्या बीजेपी ने इसलिए परवाह नहीं की क्योंकि इसी तरह के मास्टर स्ट्रोक से मणिपुर और गोवा में उसकी सरकार बन गई, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगवा दिया गया जो अदालत में गलत साबित हुआ?
वैसे नीतीश कुमार ने जो पैंतरा बदला है वो वाकई बहुत बड़ा बदलाव माना जा रहा है, इसलिए कि किसी समय नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इतने मुखर विरोधी थे कि उन्होंने बिहार के बाढ़ पीड़ितों के लिए मोदी द्वारा भेजी गई सहायता राशि तक लौटा दी थी। उन्होंने बिहार में भाजपा नेताओं को दिया रात्रि भोज इसलिए कैंसिल कर दिया था कि उसमें नरेंद्र मोदी भी भाग लेने वाले थे, लेकिन पैंतरा बदलने के बाद नीतीश कुमार का अंदाज भी बिल्कुल बदल गया और वो 2019 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को पहले से ही विजेता मान रहे हैं।
मोदी जी का मुकाबला करने की किसी में क्षमता वगैरह है नहीं।
कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, राहुल जी एजेंडा सेट करें, इनिशिएटिव लेकर एजेंडा सेट करना चाहिए। अब आप कुछ कीजिएगा ही नहीं भाई, आपके साथ मिलकर आपकी मदद करना चाहते हैं और आपको कोई चीज मंजूर ही नहीं है, पसंद ही नहीं है, हमारी कोई भूमिका पसंद नहीं। तो मैंने पहले भी कहा था, हम सहयोगी हो सकते हैं, फॉलोवर नहीं होंगे, और इस बात को अच्छी तरह जान लीजिए और जो कुछ भी है उनके दिमाग में अपना रखें।
नीतीश कुमार ने महागठबंधन टूटने पर अपना पक्ष रखा और साथ ही कई सवालों पर खुलकर जवाब भी दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा था, हमने हर चीज़ बर्दाश्त की, हमें लगा कि गठबंधन काम करता रहेगा, महागठबंधन की सरकार चलाने की हमने अपनी क्षमता भर पूरी कोशिश की, हमारी पार्टी की तरफ से RJD के सुप्रीम लीडर के खिलाफ किसी ने कोई बात नहीं कही। नीतीश कुमार के मुताबिक महागठबंधन टूटने के लिए राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव जिम्मेदार थे। उन्होंने कहा, हम लोग हर चीज़ को टॉलरेट कर रहे थे, लालू यादव तेजस्वी पर कुछ नहीं बोले, प्रशासनिक कार्यों में भी हस्तक्षेप होता रहा, हमने गठबंधन धर्म का पालन किया, हमने ज्यादातर टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दिया, हमने पहले भी लालू जी से कई बार कहा कि जो आरोप लगे हैं उस पर तथ्य स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए। नीतीश कुमार के इस कदम पर पार्टी के वरिष्ठ नेता KC त्यागी का कहना है कि फैसला पार्टी में आम सहमति से लिया गया।
पार्टी में सर्वसम्मति से लिया गया फैसला था। नीतीश कुमार जी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और विधानमंडल दल के नेता भी हैं। जितने भी हमारे विधायक और विधान पार्षद हैं सब ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके श्री नीतीश कुमार जी को इस विषय में डिसीजन लेने के लिए अधिकृत किया था और उसी के आधार पर यह गठबंधन बना है।
लेकिन पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद यादव महागठबंधन टूटने पर गहरा दुख जताते हैं।
नीतीश जी और हमने लालू जी ने भी सहयोग किया था तो गठबंधन जो है वो 11 करोड़ लोगों ने बहुत हौसले से हमको यानी मैंडेट दिया था, वो जो हालात है उसमें हमको तकलीफ है।
बदलाव राजनीति के मंच का अभिन्न हिस्सा है और बदलाव से कुछ लोगों को खुशी तो कुछ को दुख होता है, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि बदलाव में जनता का हक भी मारा जाता है। एक दूसरा घटनाक्रम गुजरात में चल रहा है। इस राज्य में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने पाला बदल लिया है और वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। शेष रह गए विधायकों के बारे में भी आशंका जताई जा रही है कि भाजपा उन्हें भी तोड़ लेने के प्रयास में लगी हुई है। इसका नतीजा यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सचिव तथा पार्टी के शीर्ष रणनीतिकार अहमद पटेल राज्यसभा में फिर पहुंचने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह की ओर से अपने जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष झेल रहे हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा कि अमित शाह को मुझसे निजी रूप से परेशानी है और इसीलिए वो सभी तरह के हथकंडे अपना रहे हैं जो मैंने अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखे, ताकि मेरी हार सुनिश्चित हो सके। पैसा, बाहुबल, बस आप नाम लीजिए, उन्होंने सब इस्तेमाल किया है। गुजरात में इस समय राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होना है। इनमें से 2 सीटों पर अमित शाह तथा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आसानी से जीत जाएंगे और तीसरी सीट पर अहमद पटेल दौड़ में हैं। कांग्रेस के 6 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी है और इससे ज्यादा लोगों के छोड़ जाने से बचने के लिए कांग्रेस ने लगभग 40 अन्य विधायकों को बेंगलुरु के एक रिसोर्ट में भेज दिया है, जहां वे तब तक रहेंगे जब तक पार्टी को उन्हें वोटिंग के लिए वापस गुजरात लाना सुरक्षित नहीं लगेगा।